मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 26 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। तो तीन सूचनाएं हैं। पहली तो यह कि जो डेली ऑडियो लेक्चर है वो शनिवार और रविवार को आपको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो कल यानी कि शनिवार को आपको उसी तरह से मिलेंगी जिस तरह से और दिनों मिलती हैं। और साथ ही साथ एक वीकली क्वेश्चन आपको दिया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, और खासकर इसका उद्देश्य है कि अगर आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हो, या यूं कह लीजिए कि एक बार आपने पूरे सिलेबस को पढ़ लिया हो, थोड़ा बहुत समझ भी लिया हो, तो आप आंसर राइटिंग का अभ्यास कर सकें। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं सन 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था, जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके बारे में कुछ बातें आप सबको बताना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। सच पूछे तो न्यूज़ के आधार पर कोई ऐसी विशेष घटना मुझे जान नहीं पड़ रही है जिसे मैं महत्वपूर्ण मानते हुए आप लोगों से चर्चा कर सकूं। लेकिन हाँ, दो ऐसी घटनाएं हैं जो अखबारों के माध्यम से लगता है कि सिविल सर्विस के लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। दैनिक भास्कर में फ्रेंड्स एक एडिटोरियल कमेंट आया है, मैं आपको ये कमेंट प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आप देखिए कि कोरोना के कारण आर्थिक व्यवस्था पूरी दुनिया की खराब है, उसमें भारत भी शामिल है, और मांग की जो स्थिति है, डिमांड, वो बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पर आ गई है। और स्वाभाविक है कि जब लोगों की कमाई ही नहीं होगी, जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा, तो वो चीज़ों की डिमांड कैसे करेंगे। इस एडिटोरियल कमेंट में उन्होंने जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है, और वो ये कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में अब धीरे धीरे डिमांड जनरेट हो रही है, यानी कि मांग में वृद्धि हो रही है। देखिए, अगर थोड़ी सी भी आपने इकोनॉमिक्स की तैयारी कर ली होगी, तो अब सीधी सी बात है कि अगर मांग में वृद्धि हो रही है तो यह तभी संभव है जब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास धन पहुंचा हो, तभी तो मांग में वृद्धि होगी। तो अब आपको अपने दिमाग को दौड़ाना है कि भाई तो ग्रामीण क्षेत्रों में धन कहां से पहुंच गया। देखिए, प्रवासी मजदूर तो जितने भी थे सब अपने अपने गांवों में चले गए, तो वो तो कोई धन लेकर के गए ही नहीं है, क्योंकि बेचारे जो कमाते थे अपने घर वालों के लिए हर महीने भेज देते थे, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो खजाना लेकर के गए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में धन आ कहां से गया। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में यही आपको थोड़ी सी सतर्कताएं बरतनी पड़ती हैं। अब हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में धन की बात देखते हैं आज के संदर्भ में, तो सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं वगैरह का उत्पादन शुरू हो गया, उनका जो उनकी जो फसल थी वो तैयार हो गई, लेकिन कोरोना के बावजूद उसकी खरीदी जारी रही, और खरीदी जब की गई उनके फसल की, और इस बार उत्पादन भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, और राज्यों ने बहुत रिकॉर्ड खरीदी भी की है, तो उससे किसानों के हाथ में लगभग 1,16,000 करोड़ रुपए पहुंच गए, यानी कि 1,16,000 करोड़ रुपए किसानों के हाथ में आ गए। ठीक है, फिर आप याद करने की कोशिश कीजिए कि सरकार ने किसानों की मदद के लिए, मजदूरों की मदद के लिए, यानी कि जो प्रवासी मजदूर गए हैं उनकी मदद के लिए, और क्या क्या घोषणाएं की, किस किस तरीके से इकोनॉमिक स्टिमुलस के लिए घोषणाएं की गई। तो आपको याद आएगा, इसमें आपके बकायदे से एडिटोरियल कमेंट में दिया हुआ भी है कि किसानों के खाते में 2,000 रुपए सम्मान निधि के रूप में भेजे गए, पीएम किसान निधि के रूप में, और इस तरीके से लगभग 8,37,00,000 किसानों को पैसा दिया गया। अब 8,37,00,000 को आप बकायदे 2,000 से गुणा कर दीजिए तो पता लगा कि इतना धन और गांव में पहुंच गया, तो ये काफी हो जाता है, लगभग 16-17 लाख के करीब हो जाएगा। खैर, तो दोस्तों ये भी पैसा गांव में पहुंच गया। इसके बाद आप जब याद करेंगे तो पता लगेगा कि हाँ, जो हमारा जो ग्रामीण राष्ट्रीय गारंटी योजना है, रोजगार गारंटी योजना है, इसकी राशि भी सरकार ने बढ़ा दी थी, 50,000 करोड़ रुपए और देने की घोषणा की थी। तो 50,000 करोड़ रुपए किनको मिला, जो हमारे प्रवासी मजदूर गए थे, उन्होंने वो काम करने लगे तो उनको भी ये 50,000 करोड़ रुपए मिल गए। तो दोस्तों अभी 50,000 करोड़ रुपए पूरे तो खर्च नहीं हुए होंगे, लेकिन अभी के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 17-18 हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं इसके तहत। तो ये भी धन गांव वालों के हाथ में पहुंच गया। तो जब आप इनको टोटल करते हैं तो 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया है। तो ये 1.5 लाख करोड़ रुपयों ने डेफिनेटली गांव में एक किस्म की डिमांड जनरेट कर दी है, तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि अभी चीन के सामान के बहिष्कार को लेकर के काफी बातें हो रही हैं। देखिए होता क्या है कि जब हम एक इमोशनल नागरिक के रूप में किसी चीज को सोचते हैं तो बिल्कुल ये लगता है कि बहिष्कार किया जाना चाहिए, और लोगों ने बहिष्कार करना शुरू भी कर दिया चीनी उत्पाद का, राइट। लेकिन जब आप एक राष्ट्रीय स्तर पर सोचते हैं और संपूर्णता के साथ सोचते हैं तो फिर थोड़ा सा विवेक का सहारा लेना पड़ता है। विवेक का सहारा लेने का मतलब है कि हम फिर उनको रैशनल तरीके से सोचते हैं कि ठीक है चलिए हम चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन इसका हमारी टोटल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने, हालांकि इस संदर्भ को ध्यान में रखकर नहीं दूसरे संदर्भ को ध्यान में रखकर के इस पर एक टिप्पणी की है, और बहुत अच्छी टिप्पणी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे यहां जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका बहुत सा सामान कल पुर्जे चाइना से आते हैं। अगर चाइना से हमने मंगाना बंद कर दिया तो विनिर्माण उद्योगों पर जबरदस्त रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खासकर जो हमारे यहां दवाइयां बनती हैं उसका कच्चा माल चाइना से आता है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो हमारा जो दवाई उद्योग है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और ये तब तक तो पड़ता ही रहेगा जब तक कि हम इसके बारे में कुछ दूसरी व्यवस्था नहीं कर लेते। मुश्किल ये कि जब हम दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में सोचते हैं, चाहे हम जापान, वियतनाम और इधर दूसरे देशों में जाएं, तो पता लगता है कि वहां से जो चीजें आती हैं चाइना की तुलना में महंगी आती हैं। जब महंगी चीजें आएंगी, कच्चा माल जब महंगा आएगा, तो स्वाभाविक है कि फिर इंटरनेशनल मार्केट में बना रहना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। इसमें एक बहुत खूबसूरत आंकड़ा दिया हुआ है जो मैं चाहूंगा कि आप बल्कि नोट भी कर लें, और वो ये है कि जो चाइना है, अब देखिए दुनिया भर का निर्यातक देश चाइना बन गया, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो वो जितना भी निर्यात करता है उस टोटल निर्यात का केवल 3% भारत को करता है। इसका मतलब है कि अगर भारत ने उसके यहां से सामान मंगाना बंद भी कर दिया तो शायद चाइना के अर्थव्यवस्था पर इसका कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल 3% ही हमारे यहां भेज रहा है, जबकि हम अपना 6% भेज रहे हैं। मतलब भारत चाइना को अपने टोटल निर्यात का 6% भेजता है। तो अगर हमारा निर्यात रुक गया तो देखिए उस 6% कम होगा, और चीन से हमने आयात तो उसका रोक दिया अपने यहां से, तो उसको पर केवल 3% का ही फर्क पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे रैशनल पॉइंट्स हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रूप से रहने ही चाहिए, ताकि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या बहिष्कार की नीति हमारे देश के लिए उपयोगी होगी, तो डेफिनेटली जब हम इमोशनली होकर के सोचेंगे तो बिल्कुल उपयोगी होगी, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जब हम रैशनल तरीके से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सोचेंगे तो फिर हमें थोड़ा सा सतर्क होकर के निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, भले ही हमारा निष्कर्ष यही क्यों न हो कि हाँ यह उपयोगी होगा, लेकिन हम अपनी बात को तथ्यपूर्ण तरीके से रख पाएंगे। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है आपातकाल। 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था, कल उसके 45 वर्ष पूरे हुए हैं। 1975 में ये लगा था, तो चैनल्स पर भी इसके बारे में खबरें आ रही थी, अखबारों में भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो मैं थोड़ी सी इसकी जो मूलभूत बातें हैं जो आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए जरूरी होती हैं, या कह लीजिए कि अभी जो आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं या जो डिबेट सुन रहे हैं, उनकी एक पृष्ठभूमि आपको पता लग जाए। दरअसल इसके पीछे एक घटना हुई थी फ्रेंड्स, और हुआ ये था कि मिसेस गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, बकायदे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो थी ही, स्वाभाविक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जो सांसद का चुनाव जीता था उसके खिलाफ एक केस दायर किया गया कि इन्होंने अपने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया, चुनाव में इस्तेमाल किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तथ्य को सही मानते हुए उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया। ये पाया कि हाँ इन्होंने अपने अधिकार का, क्योंकि उस समय भी वो प्रधानमंत्री थी जब चुनाव हुआ था, तो उन्होंने जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया। इसका मतलब है कि वो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकती तात्कालिक रूप से, और अगर प्रधानमंत्री के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन कोर्ट ने लगा दिया है, मतलब ये कह लीजिए कि घोषणा कर दी है कि हाँ दुरुपयोग किया, तो नैतिक रूप से बनता है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन एक न्यायिक तरीका फिर भी बाकी था कि चूंकि हाई कोर्ट का यह फैसला था तो उसके विरुद्ध तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी जा सकता है, और वो रास्ता चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना उनके लिए भी खुला था। तो इंदिरा गांधी जी ने यह किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, इसके खिलाफ उन्होंने अपील कर दिया, और देश में उनके खिलाफ आक्रोश न हो, आंदोलन की शुरुआत न हो, इसको ध्यान में रख करके उन्होंने आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी घोषित कर दी। अब ये जो उन्होंने इमरजेंसी घोषित की उसके पीछे, मतलब सच पूछे तो उस तरह का कोई वैलिड कारण नहीं था कि देश में आपातकाल लगा दिया जाए। तो बार बार आप देख रहे हैं कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी अटैक कर रही है कि एक परिवार का हित राष्ट्र का हित नहीं हो सकता, दरअसल उसके पीछे यही एक तर्क है, लॉजिक है, जो शायद आप समझ पाएंगे कि वो केवल एक व्यक्ति के पद की बात थी। ऐसा कुछ भी नहीं देश में हो रहा था कि कोई आंतरिक विद्रोह की स्थिति बन गई थी या बाहर से कोई आक्रमण होना था, क्योंकि इसके आधार पर तो आप आपातकाल लगा सकते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं थी। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे जयप्रकाश नारायण जैसे जो उस समय बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, वो प्रधानमंत्री की बहुत से नीतियों के विरोध में एक प्रकार से बातें करते थे, कहीं कहीं आंदोलन भी होते थे, वो एक बात हो रही थी, तो वो तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तो दोस्तों, उन्होंने एमरजेंसी लगाई और 21 महीने तक ये एमरजेंसी बनी रही, और उसी दौरान उन्होंने बकायदे एक संशोधन भी किया संविधान में, और संविधान में जो संशोधन किया वो संशोधन कुछ इस तरीके से किए कि प्रधानमंत्री और अधिक शक्तिशाली हो जाए, और खासकर उस संविधान संशोधन को एक प्रकार से शक्ति के केंद्रीयकरण के रूप में लिया जाता है, या कह लीजिए कि डेमोक्रेसी की हत्या करने के रूप में लिया जाता है कि प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा हो जाएगा। बाद में फिर 1977 में जब चुनाव हुए तो लोगों में इमरजेंसी की स्थितियों को लेकर के इतना आक्रोश था कि कल्पना करके देखिए कि न केवल कांग्रेस पार्टी का ही सफाया हो गया, बल्कि खुद श्रीमती इंदिरा गांधी अपना सांसद का चुनाव हार गई थी, और उसके बाद फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कई जो राजनीतिक दल उस समय के थे उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, फिर मिलकर के सरकार बनाई, और सबसे पहले उन्होंने जो संविधान संशोधन किया गया था, फिर एक संविधान संशोधन लेकर के आए जिसमें उस संशोधन की सारी गलत बातों को इसमें दुरुस्त किया गया। तो दोस्तों, ये आपातकाल की थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने जो बहुत ही बेसिक बात हो सकती है वह बताई है। फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो साथियों के नाम हैं रितेश कुमार सोलापुर महाराष्ट्र से और नितेश राज, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का भी ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।